तारीख 30 मई दिन शनिवार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। भारत में 298 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि का एक रुपया भी खर्च नहीं किया, साल बीत गया। इस मामले में सभी राजनीतिक दलों के सांसदों का रवैया कमोवेश एक ही जैसा है, चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी के गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री उमा भारती हो, विपक्षी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव हो। इन्हें सालाना मिलने वाले 5 करोड़ की निधि का रुपया तक खर्च नहीं हुआ। सवाल यह है कि नेता अपने इलाके के विकास के लिए क्यों इस धन का इस्तेमाल नहीं करते, मजबूरी क्या है? बहस इसी विषय पर मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। भूमि अधिग्रहण पर मौजूदा अध्यादेश की अवधि 4 जून को समाप्त हो रही है। विपक्षी दलों के अलावा मोदी सरकार में शामिल शिवसेना भी भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है। जापान में अब से कुछ देर पहले शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी टोक्यो में भी भूकंप महसूस किया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और इसका केंद्र राजधानी टोक्यो से 874 किलोमीटर दूर था। AFP न्यूज़ के मुताबिक राजधानी टोक्यो में भूकंप के कारण करीब 1 मिनट तक इमारतें हिलती रहीं। फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारत के अदानी समूह के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के मूल निवासियों ने कंपनी की खनन परियोजना के खिलाफ वहां की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मूल निवासियों का कहना है कि कोयला खदान की खुदाई करने से उनका मूल निवास नष्ट हो जाएगा। अदानी समूह ने क्वींसलैंड में लगभग $3 अरब यानी करीब 19,500 करोड़ रुपये खर्च कर कोयला खदान विकसित करने का फैसला किया है, लेकिन वहाँ के मूल निवासी इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम टापू बनाने की प्रक्रिया पर तुरंत और स्थायी तौर पर रोक लगाने की अपील की है। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने सिंगापुर में शांग्रीला वार्ता में कहा कि इस क्षेत्र में चीन की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। वहीं चीन ने इस बयान पर सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। वार्ता में शिरकत कर रहे चीनी प्रतिनिधि झाओ शियाओजू ने चीन की कार्रवाई को उचित और वैध करार दिया है। आप कुछ द्वीपों पर निर्माण कार्य के जरिए शांति और स्थिरता कायम करने की चीन की कोशिशों की आलोचना कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपकी आलोचना पूरी तरह से आधारहीन है, चीनी प्रतिनिधि झाओ शियाओजू के शब्द। चीन इससे पहले भी कई बार कह चुका है कि दक्षिण चीन सागर में उसकी कार्रवाई वैध है और संप्रभुता बनाए रखने के लिए जरूरी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में सरकारी सेनाओं की ओर से हेलीकॉप्टरों के जरिए किए गए बमों से कम 71 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन स्थित सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले अलबाब शहर में 58 लोग मारे गए, जबकि 12 लोगों की मौत एलेप्पो शहर में हुई। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में सभी आम नागरिक थे। सीरियाई सरकार हमले की बात से लगातार इनकार कर रही है। पाकिस्तान में क्रिकेट अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को स्टेडियम के पास हुए धमाके के बावजूद जिम्बाब्वे के साथ रविवार को होने वाला तीसरा और आखिरी एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो बीबीसी इंडिया बोल में आपका स्वागत है। विषय आप जान चुके हैं, टेलीफोन लाइनें आपके लिए खुल चुकी हैं और मेरे साथ यहां पर स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी और बिहार के सिवान ज़िले से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, सांसद निधि कोष को खर्च नहीं करते, इस बात पर आज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आप ही से कि अब तक कितना पैसा खर्च किया आपने? फोन पहुंच नहीं पाया। उर्मिलेश जी, सांसद निधि का जो कोष है, जो लोग सांसद हैं, नेता वादे करके आते हैं, वो वादे करने के बाद 5 करोड़ रुपए बहुत रुपए होते हैं, तो वो खर्च क्यों नहीं होते?
देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं और मैंने तो देखा है, खासकर रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखें, और कई बार इसको लेकर पार्लियामेंट में भी क्वेश्चंस हुए हैं, बाहर भी क्वेश्चंस हुए हैं, कि आमतौर पे कई बार बड़े नेता कम खर्च करते हैं। जो देश के गणमान्य नेता हैं उनका अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो बहुत कम खर्च कर पाते हैं कई बार, कुछ लोग ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे MPs हैं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो जो बहुत विख्यात नहीं हैं, वो अपने क्षेत्र पर खासकर फंडिंग को लेकर, फंड के उपयोग को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शस हैं। तो मुझे लगता है एक बड़े जो नेता हैं उनका एक तो ये कारण होता है कि बहुत सारे काम वो अपने क्षेत्र में सरकार की अन्य योजनाओं के जरिए करा लेते हैं, ये एक कारण है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन की कमी है, क्योंकि जो पहले हमारा पहले जो संरचना थी काम की, कामकाज की, और अब जब से ये लागू है, ये अगर देखा जाए तो 1993 में पहली बार ये प्रपोज किया गया
नरसिम्हा राव के समय,
जी हाँ, दिसंबर महीने में, और उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए, बहुत सारी चीज़ें लाई गई, लेकिन कुल मिलाकर यह योजना एक अजीब तरह की योजना है जिसने हमारे संसदीय लोकतंत्र को कितना खूबसूरत बनाया है, कितना ट्रांसपेरेंट बनाया है, एक एग्जीक्यूशन जो कार्यक्रमों का है उसमें क्या इफिशेंसी आई है, मुझे लगता है इस पर एक गंभीर आकलन करने की ज़रूरत है। और सोमनाथ चटर्जी जैसा विद्वान लोकसभा अध्यक्ष, उसने तो ये कहा था कि MPLAT को ख़त्म कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया है और इससे ग्रामीण विकास के मामले में, निर्माण के बारे में बहुत सारी नई पेचीदगियां पैदा हो रही हैं।
जी उर्मिलेश जी, हमारे जो सांसद सिवान जिले से भारतीय जनता पार्टी के हैं, ओम प्रकाश यादव जी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। ओम प्रकाश जी, आज हम सांसद निधि कोष के खर्चे के बारे में बात कर रहे हैं। ओम जी, कितना पैसा खर्च किया अब तक आपने?
देखिए, हमें 5 करोड़ रुपया मिला और हमने 5 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, जिसमें हमने सर्वाधिक पैसा हमने बिजली तार पोल और ट्रांसफार्मर में खर्च किए हैं और मास लाइट खरीदने में खर्च किए हैं, नाली और गली में PCC कराने में खर्च किए हैं, और गरीब बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए हमने 22 लाख रुपया विद्यालयों में किताब दे करके खर्च किया है।
जी, आपने बताया कि आपने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन भारत में 298 सांसद ऐसे हैं जिसमें कि भारत के गृह मंत्री भी शामिल हैं, राजनाथ सिंह शामिल हैं, बड़े बड़े नेता मुलायम सिंह यादव शामिल हैं, 1 रुपया नहीं खर्च करते, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हैं, इनके रुपये खर्च नहीं करते, तो क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब खर्च कर रहे होते हैं तो क्या सोचते हैं और कैसे खर्च कर लेते हैं, आप फैसला ले लेते हैं, बाकी लोग क्यों फैसला नहीं ले पाते?
देखिए, हम लोग एक तो साधारण हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग नीचे से हैं, हम लोगों के पास अनेक तरह के लोग आते हैं अपने क्षेत्र की समस्या लेकर, हम लोग इमिडिएटली उनको अनुशंसा करके उनके हाथ को दे देते हैं कि ले जाइए और जिला योजना में इसको जमा कीजिए, अपना काम करवाइए, हम लोग उसमें विलम्ब नहीं करते हैं। हमें लगता है कि इन लोगों के पास पहुंचने में कार्यकर्ताओं को काफी कठिनाई होती होगी, इसीलिए पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है।
जी, हमारे साथ सिवान से ही एक श्रोता कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, उनसे संपर्क हम करते हैं। जी, नाम बताएं और क्या कहना चाहते हैं, आपके सांसद आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, जो हमारे सिवान से लिसनर थे उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, ये जो मंत्री जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा मंत्री जी नहीं, सांसद महोदय जो कह रहे हैं, क्या ये बात गले उतरती है कि भाई?
देखिए, मैंने एक बात आपसे कही और उसको इन्होंने एक तरह से अप्रूव किया कि कई गणमान्य नेता इस देश के हैं, हाँ, वो अपना फंड का उपयोग नहीं कर पाते, और जो कई लोग हैं जिनको आप आम सांसद कह लीजिए या जो किसी बड़े पद पर नहीं है, खासकर मंत्रिमंडल में नहीं है या विपक्ष के बड़े कोई महाबली दिग्गज नहीं है, इतने जो 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 काफ़ी विख्यात लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ काफ़ी हद तक कि इन लोगों के पास रोज़ रोज़ दौड़ के कार्यकर्ता आते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बड़े जो मंत्री हैं, जो बड़े दिग्गज हैं, उनके पास जिम्मेदारी बहुत है, वो पूरे देश में घूमते रहते हैं, दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है गांव से, कस्बे से, पंचायत से, ब्लॉक से, वो उनका उतना नहीं होता है। अगर उनके कन्वीनर्स या उनकी ओर से नॉमिनेटेड लोग वो कोऑर्डिनेट करें तो वो भी खर्च कर सकते हैं। ये देखिए, दिक्कत यहाँ ये हो रही है,
समन्वय की दिक्कत हो रही। सिवान जिले से जो हमारे श्रोता थे कार्यक्रम में, वो शामिल हो चुके हैं। जी, नाम बताएं।
हेलो
जी, नाम बताएं।
सर मेरा नाम मोहम्मद वसी है।
हाँ मोहम्मद वसी साहब, आपके जो सांसद हैं इलाके के वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं और आपके जो सांसद हैं ओम प्रकाश यादव जी हैं वो अपने फंड का पूरा इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको क्या लगता है?
सर मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। फंड तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कितना इस्तेमाल किया है, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं, क्योंकि मेरा घर सिवानी है, कि जो काम हुए हैं जैसे गांव में और शहर के सड़कें, गांव की सड़कें या गांव में बिजली का काम हो, तो बहुत हद तक बहुत सारे काम हुए हैं। तो
क्या काम नहीं हुआ? क्या काम नहीं हुआ?
देखिए सर, नहीं होने में तो ऐसा कुछ मैं नहीं बता सकता। क्या काम नहीं होने में ये है कि थोड़ा सा ध्यान हॉस्पिटल वगैरह पे देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्राइवेट डॉक्टरों की अपनी मोनोपोली है। ठीक है, सिवान के अंदर क्या है कि प्राइवेट डॉक्टरों की अपनी मोनोपोली है, जो शहर के अंदर एक ही सरकारी अस्पताल है, बाकी गांव में भी कुछ अस्पताल है, लेकिन रात में वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
जी रात में प्रॉब्लम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो सांसद हैं ओम प्रकाश यादव जी, आपने अपने ही एक क्षेत्र के एक व्यक्ति की आवाज सुनी, ये समस्या है, क्या इसका समाधान हो सकता है?
निश्चित रूप से वसी भाई ने कहा वो मूलभूत समस्या है, जनता की भावनाओं को हम देखते हुए निश्चित रूप से सदर अस्पताल में मूलभूत व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में वशी साहब हमारे शामिल होने के लिए। एक और श्रोता को मैं यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूँ। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, हाँ नाम बताएं।
राम राम सामोहनलाल जी।
जी नमस्कार,
मैं भजनलाल गुड़ामानी बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
अच्छा बाड़मेर राजस्थान से बोल रहे हैं। आपके इलाके में सांसद ने कितना खर्च किया या फिर कितना विकास हुआ आपके यहाँ पर?
हमारे सांसद ने सर, सांसद क्षेत्र में सर 0% विकास हुआ है। अभी तक जिन लोगों की, ग्रामीणों की, किसानों की मांगे थी वो अभी तक पूरी हुई नहीं है। यहाँ पर पानी की कमी है तो लोगों ने नहर की मांग रखी थी कि यहाँ से नहर गुजरे तो लोगों को कृषि हेतु पानी और पीने के हेतु पानी मिले, लेकिन उसकी भी मांग अभी तक पूरी हुई नहीं है।
मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं हुआ। एक श्रोता को कार्यक्रम में और शामिल करते हैं। जी नाम बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
सर हम राजेश बोल रहे हैं, जौनपुर जिले से, मेवाड़ जिले सुरगांव उत्तर प्रदेश से।
उत्तर प्रदेश में हमने मतलब राजस्थान बात की, अब उत्तर प्रदेश आ गए। जी
हाँ सर, जो बड़े नेता है सर वो अपनी पार्टी को गतिविधियों में ज्यादा सर सक्रिय रहते हैं, इसलिए विकास पर उनका ध्यान हट जाता है सर। गांव का
विकास पर ध्यान हट जाता है, अपनी पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। जी ओम प्रकाश जी, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ। दो लोगों की हमने आवाज़ सुनी, जिसमें से कि एक राजस्थान से आवाज़ थी और एक उत्तर प्रदेश से आवाज़ थी। हालांकि ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, आपसे इनका कोई वास्ता नहीं है। ये क्या ये बात बिल्कुल सही है कि जो बड़े नेता हैं वो पार्टी की गतिविधियों में इतने शामिल हो जाते हैं कि उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता अपने इलाके के लोगों की समस्या सुनने के लिए, और फिर जब वोट मांगने की बात आती है तो फिर उन्हीं के पास पहुँच जाते हैं?
जी 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 सही बात, जो उत्तर प्रदेश से उन्होंने कहा सही बात कहा कि बड़े लोग पार्टियों के गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनको चाहिए कि अपने प्रतिनिधि बना करके जनता की समस्या को शीघ्र निष्पादन करने के लिए और अपनी सांसद मत की निधि को खर्च करने के लिए व्यवस्था स्थापित कर देते तो यह समस्या स्वतः दूर हो जाती है।
एक व्यवस्था की ज़रूरत है ओम प्रकाश जी कह रहे हैं। उर्मिलेश जी, एक मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूँ फेसबुक से, कई कारण हैं। कुछ नेता ज़रूरत से ज़्यादा हाई प्रोफाइल हैं, इनकी इलाके में रुचि नहीं है। दूसरा कारण, कुछ के लिए इलाके के विकास से ज़्यादा अपनी पार्टी या दूसरी चीज़ें ज़रूरी हैं। तीसरा, कुछ नेता इसलिए नहीं खर्च करना चाहते क्योंकि कमीशन तय नहीं हो पाया।
देखिए इस योजना में भ्रष्टाचार नहीं है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आम तौर पे माना जाता है कि बहुत सारे जो राजनीतिक तंत्र अपने देश का खासकर इस योजना के आने के बाद खड़ा हुआ है उसमें कार्यकर्ता को एक तरह से मध्यस्थ या अगर उसको और ज़्यादा भदेश शब्दों में कहा जाए तो एजेंट के रूप में तब्दील कर दिया गया है अनेक जगहों पर। तो कार्यकर्ता जो है वो सांसद से या जनप्रतिनिधि से ये चाहता है कि उसको कोई जिम्मेदारी मिले और खासकर जिसमें उसको वित्तीय लाभ हो, तो एक बड़ा संकट ये है। और कोई भी जेन्युइन एमपी ईमानदारी से जो काम करा रहा है उसके सामने भी संकट है कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता और बीच में एक तरह के एजेंट का कैसे फर्क करे और कैसे उस संतुलन को कायम रखे, पहली बात। दूसरी बात, एक और मैं सवाल उठाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इस पर जो सांसद हैं या आपके और जो व्यूअर्स हैं वो भी बात कर सकते हैं, आपके श्रोता, कि भई अभी आदर्श ग्राम योजना आई,
उसमें से 112 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने ग्राम का चयन किया ही नहीं।
एग्जैक्टली और दूसरी बात यह है कि आदर्श ग्राम योजना के लिए जो भी फंडिंग है वो एमपीलैड से ही लेना है, सांसद निधि से ही लेना है, उसके लिए अलग से आप निधि नहीं दे रहे हैं। तो हो ये रहा है कि एक सांसद अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के सारे गांवों, कस्बों और शहरों को कवर करने के लिए 5 करोड़ का कैसे उपयोग करे और एक गाँव को सुंदर और बहुत ही अच्छा और आदर्श ग्राम बनाने के लिए जो खर्च उसको करना है उसमें संतुलन कैसे कायम करे। तो ये एक असंतुलन जो पैदा हुआ है इस नई योजना से वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम।
उर्मिलेश जी, कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे कि इस प्रस्ताव पर जो बात हो रही है कि 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया जाए, ये एक अगला पहलू आएगा। कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
अब्दुलजीज भट्ट जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूं, सुनकोट क्षेत्र से।
जी भट्ट साहब।
सर दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग यहाँ पर रहते हैं पहाड़ी इलाके में, तो मैं कल ही एक अपने सांसद के पास गया था। अब उसके खर्च के तो छोड़ो, सांसद के पास मैं 2 दिन करता रहा कि उनसे मिलूं, तो सांसद जब मिले सुबह तो उनसे बात हुई कि हमारे ये प्रॉब्लम है, तो सांसद ने बोला मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। तो मुझे इतना दुख हुआ कि हमारे ऐसे सांसद हैं कि जो अपने कार्यकर्ता से बात करने से भी कतराते हैं। तो मोदी जी ने इनको बोला था कि अपने क्षेत्र से जाके लोगों से पूछें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ये हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि काम करना भी या कुछ उसका डेवलपमेंट करना तो दूर की बात है, कम से कम अपने कार्यकर्ता को वो बात से तो मुतमईन करें।
जी जी, मतलब बात ही नहीं सुनते जब कार्यकर्ता अपने नेता के पास पहुंचते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। एक श्रोता को कार्यक्रम में और शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं।
जी मिथिलेश, सिवान जिला से, बिहार।
अच्छा, आप भी सिवान से आ गए, लगता है हमारे आज चूंकि सिवान से सांसद शामिल हैं कार्यक्रम में इसलिए श्रोता भी सिवान से ज्यादा जुड़ गए हैं। जी मिथिलेश जी बताइए।
मान लीजिए 298 सांसद है पूरे भारत में जो अभी अपनी निधि से एक भी पैसा खर्च नहीं किया।
बिल्कुल सही।
जो मान लीजिए जो बड़े बड़े कार्यकर्ता है कितने होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। जो नामी ग्रामी है जो अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो योजनाओं को लागू कर रहे हैं, ठीक है, तो और भी जो कार्यकर्ता है वो क्या कर रहे हैं, जो अपने लोगों की अपने निधि से जो पैसा खर्च नहीं कर रहे, और क्या वो लोग अपने कुछ लोग कुछ सांसद ऐसे हैं कि जो अपने गांव तक ले नहीं जाते हैं और उन लोग से बात भी नहीं करते, जनता से कतराते हैं और लोगों को ऐसी करते हैं, लोगों को मैंने बात करने से भी वो हिचकते हैं।
बात करने से चकते जी, आपकी भी तो आपकी बात भी वही कमोवेश एक ही जैसी बात है जी। फिर से हम ओम प्रकाश जी के पास चल रहे हैं। ओम प्रकाश जी, एक श्रोता हमारे सिवान से ही और जुड़ गए हैं, इनकी बात आपने सुनी, कुछ कहना चाहेंगे?
उनसे पूछ लिया जाए सर, ऐसा है कि हम लोग सुबह से शाम तक रात तक बिल्कुल जनता के लिए एकदम समर्पित होकर काम करते हैं।
आप जैसे कितने लोग हैं ओम प्रकाश जी?
निश्चित रूप से हम सभी लोगों को होना चाहिए। जब हम जीत कर आए सिवान से तो हमने देखा कि गरीब लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए तो मुफ्त में कम पैसे में लीवर की, किडनी की, हार्ट की इलाज संभव है। और हमारे यहाँ 50-60 मरीज रहते हैं, सब लोगों को खाना खिलाते हैं, सब लोगों को एम्स में भेज करके कार्ड बनवा कर दिखलाने का काम करते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं उन्हें आने जाने का किराया भी देते हैं।
अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि एक अभी जो सांख्यिकी मंत्री हैं वीके सिंह, उन्होंने लोकसभा में सांसद निधि कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ की बात कही, आपको लगता है कि आपके पास तो पूरे पैसे खर्च हो गए, आपको लगता है कि 5 से 25 होने चाहिए?
निश्चित रूप से 5 से 25 होने चाहिए, इसलिए कि ऊंट के मुंह में जीरा है, ये 5 करोड़ काफी समस्या उत्पन्न होती है। हमारे 6 विधानसभा है और 14 ब्लॉक है हमारे जी में, और बताइए कैसे संभव होगा। सारे लोग अपने अपने गांव में कुछ न कुछ काम करवाना चाहते हैं, स्वाभाविक भी है, उनको वोट दिए हैं तो उनके क्षेत्र में मेरा दायित्व तो बनता है कुछ न कुछ काम कराने का। तो ये पैसा बहुत कम हो जाता है।
आपके लिए ये पैसा बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश यादव जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी 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 बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। सिवान से आज बहुत सारे लोग, हमारा कार्यक्रम लग रहा सिवान केंद्रित हो गया। इन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए बिल्कुल ज़रूरी है, 5 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन भाई बाकी नेताओं का क्या, जिनसे जिन्होंने ढेरा रुपए नहीं खर्च किया, जो सिर्फ कुछ लाखों में सिमट गए। मुलायम सिंह की बात करें, बड़े नेता हैं, एक रुपया नहीं खर्च हुआ, सिर्फ एक ही जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए, वो भी कुछ लाख में।
देखिए यही बड़ा प्रश्न है कि कुछ, मान लीजिए कुछ एक MP हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अधिक खर्च किया, यह भी आकलन का विषय है, यह भी असेसमेंट का विषय है कि वाकई प्रायोरिटीज़ जो थी, जो प्राथमिकताएं उस उन योजनाओं की उस इलाके में थी वो ली गई, या कार्यकर्ता या राजनीतिक स्वार्थवश जो योजनाएं ली गई,
या वोट बैंक बनाने के लिए,
वोट बैंक बनाने के लिए ली गई, वो ज़्यादा ली गई, तो यह भी एक आकलन का विषय है। मेरा मानना है, मैं जो एक ऑब्जर्वेशन मेरा है इतने वर्षों तक भारत की संसद कवर करने के बाद और लोगों से
इंटरेक्ट
करने के बाद, कि भारत में जो सांसद हमारे हैं, अगर 25 करोड़ उन्हीं को केवल दे दिया जाए कि भाई आपके अनुसार खर्च होगा, आप जो कहेंगे वो करेगा होगा, तो पूरा पंचायती राज सिस्टम जिसको हम बिल्ड करने की बात करते हैं, जो लोअर लेवल से ऊपर लेवल तक डेमोक्रेटाइजेशन की
सत्ता
बात
के विकेंद्रीकरण की, जो
विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, वो खत्म हो जाएगा, पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि दुनिया भर में डेमोक्रेसीज जहां भी हैं, जहां भी लोकतंत्र है, वहां सांसद या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम कानून बनाना है, और कानून बनाने के साथ बड़े मुद्दों पर डिस्कशन करना है, उनको आर्टिकुलेट करना है, न कि योजनाओं का निर्धारण करना और उनका इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना। मुझे लगता है ये एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि जहां भी फंडिंग इन्वॉल्व हो रही है, जहां प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आपकी जिम्मेदारी दी जा रही है, वहां आप अपने अन्य जो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक रोल हैं, हाँ, एक संसदीय लोकतंत्र में, उससे आप अलग हट जा रहे हैं और आप बाध्य किए जा रहे हैं लोगों से कि आप मेरा काम कीजिए, उनका काम कीजिए, और इस तरह पूरी की पूरी डेमोक्रेसी डिरेल हो रही है, और जो पॉलिटिकल जो एक कंटेंट है डेमोक्रेसी का, वो भी डाइल्यूट हो रहा है। तो मुझे लगता है दोनों के बीच संतुलन
की जरूरत है। एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं, अपनी बात रखें।
हेलो
जी, हाँ
जी, मैं मोटाराम साहू बोल रहा हूँ, गांव नया बटाड़ू, तहसील बाईतू, जिला बाड़मेर से।
मोटाराम जी, जी
जी सर, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो विकास के लिए काम जो हमारे सांसद है ना कर्नल सोनाराम, वो कर रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, पानी की भी व्यवस्था यहाँ, मतलब घर,
आप उनके सपोर्टर हैं क्या?
उसके सपोर्टर नहीं है, जो काम कर रहे हैं, तो काम को तो मतलब कहना पड़ेगा ना, जो काम हो रहा है।
जी जी, तो मतलब आपको लगता है कि आपके जो सांसद हैं वो काम कर रहे हैं और वो जो इस कोष का पैसा है खर्च कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं, आप कहां से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, हां, नाम बताएं।
सर, मैं मोहम्मद जावेद बोल रहा हूं,
रुड़की से। जावेद भाई, हाँ बताएं।
मोहनलाल साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप अपनी राय रखें।
सर, मेरा कहना यह है कि हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नोटों की गड्डी आती है, कारगिल के शहीद के कफन के नाम पर, घर के नाम पर घोटाला होता है, मायावती मुलायम सिंह के जन्मदिन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो 100 बार श्रम के कारण मर गए
वो होते। सब ठीक है जावेद भाई, ये जो हम कोष निधि की बात कर रहे हैं, इस पे आइए।
सर, मेरा कहना ये है कि हमारे MP और हमारे बड़े बड़े गणमान्य सांसद शपथ ग्रहण का समारोह करते हैं कि हम विकास करेंगे, हम जो है काम करेंगे, लेकिन सही मायनों में शपथ ग्रहण समारोह का अपमान है। ये संसद की जो गरिमा है, संसद का जो एक हिंदुस्तान में पूरे विश्व में महत्व है, स्थान है, उसका जो है ये कुलम कुल्ला अपमान है।
जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद उन तमाम वादों को भूल जाते हैं, वो सिर्फ वो दावे रह जाते हैं।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो योजनाएं अपने देश में जिस तरह लागू की जाती हैं और उनको तय किया जाता है, खामी वहीं पर है। देखिए, अभी सांसद महोदय कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात, लोक कल्याण होना चाहिए कि हम पैसा भी देते हैं घर लौटने के लिए, इलाज भी कराते हैं एम्स में, हम उनका रजिस्टर भी बनवाते हैं, कार्ड भी बनवाते हैं, वगैरह वगैरह। सवाल इस बात का है कि बिहार के सुदूर इलाके से लोग, छोटे छोटे साधारण रोगों के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली आने के लिए अभिशप्त ही क्यों है,
वहां क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था,
वहां कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड हुआ है, तो ये कौन सी प्राथमिकताएं, कौन सी वरीयताएं हैं आपकी योजना की कि सुदूर इलाके उड़ीसा से लेकर के कर्नाटक तक, तमिलनाडु से लेकर के और कहां तक, तमिलनाडु साउथ में तो फिर भी मेडिकेयर बहुत अच्छा है, लेकिन खासकर हिंदी हार्टलैंड में मेडिकेयर की इतनी बुरी स्थिति क्यों है? इसका मतलब इतने वर्षों के बावजूद भी
हम सफल नहीं हो पाए,
एमपी लाड योजना के बावजूद भी सफल नहीं हुए। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रही है बहुत संक्षेप में, कि देखिए हमें अपने को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमको प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी। अभी लेटेस्ट आंकड़ा जो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का आया है, 19 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग भूखे हैं और कुपोषणग्रस्त लोग हैं। सवाल इस बात का है कि अगर सारी योजनाएं गुड अच्छी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये क्यों है?
हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जी, नाम बताएं और अपनी बात रखें। जी
जी, पहले बीबीसी में भाग लेने के लिए भैया आपको प्रणाम और मुझे सजग करना।
जी जी नमस्कार, अपनी बात रखे, समय बहुत कम है हमारे पास।
जी जी भैया, सबसे बड़ी बात है कि सिवान के सांसद जी महोदय बोल रहे थे, हम लोग जो है नीचे से हैं और छोटे कार्यकर्ता हैं, क्या हाँ। जो जो खर्चा नहीं कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी, उस वक्त सोनिया गांधी जी, मुलायम सिंह यादव जी, ये बड़े कार्यकर्ता हैं, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है,
इनको कोई गरीबों से लेना देना नहीं है, आपकी भाव आ गया इस बात में। एक कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा कार्यकर्ता नहीं, एक श्रोता को और शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं।
हेलो
जी, नाम बताएं।
हाँ जी सर, मैं नवाज सिंह बोल रहा हूँ सर, गांव रतनदीप, जिला मंदसौर से, एमपी से।
जी जी अपनी बात रखें।
सर मैं कहता हूँ सर, आज के युग में हर आदमी को जो वो दिए ना, क्या बोलते हैं,
जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हेलो अपनी बात पूरी रख, माफ कीजिएगा आपकी बात सुन नहीं पाए।
जी सर,
जी क्या कहना चाहते हैं फिर से जरा बताएं।
जी सर, मैं कह रहा हूँ हर आदमी को कम दाम में चीज चाहिए,
हाँ
सर, वो सरकार इतना संभव नहीं जुटा पाना हर आदमी के लिए, फोकट का चाहिए, मेरा कहना मतलब
फोकट का चाहिए सरकार के लिए,
मकान चाहिए, ऐसा आराम चाहिए, तो सरकार कहाँ से ला पाएगी सर इतना?
हाँ बिल्कुल, सरकार के लिए भी बड़ी मुश्किल की स्थिति हो जाती है। एक श्रोता को कार्यक्रम में और हम शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं। हेलो,
मुक्तिनाथ पांडे।
हाँ मुक्तिनाथ जी बताइए, अपनी राय रखिए।
भैया सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो 298 सांसद जो है अपने सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए, और खर्च नहीं करने के बाद ये जो पूंजीपति लोगों के साथ मिले हुए, ये लोग गरीबों से इनको लेना देना नहीं है, कारण कि अभी दूर में सिवान के सांसद महोदय बोले कि हम लोग नीचे से आए हैं और कार्यकर्ता छोटे कार्यकर्ता है, और ये लोग जो है मैंने बड़े लोग हैं पूंजीपति के साथ हैं, तो गरीब से कोई लेना देना नहीं है,
गरीब से कोई लेना देना नहीं है। मुक्तिनाथ जी यही बात कह रहे थे। कुल मिलाकर उर्मिलेश जी, अगर हम संक्षेप में इसको समाप्त करें इस बहस को, क्या आज इस बात की प्रासंगिकता है कि ये जो फंड है, ये जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको कैसे इस्तेमाल करने दिया जाए, इसका कुछ तरीका मिलेगा?
नहीं देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम फाल्टी है, और मैं निजी तौर पर मानता हूँ कि एमपी लैट को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर
मतलब
बिल्कुल
आप वीरप्पा मोइली के जो प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट थी उसकी बात कर रहे हैं, कोष बंद कर दिया,
बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटाइजेशन जो है नीचे लेवल से ऊपर तक उस प्रक्रिया को रोकता है। नई नई योजनाएं आ रही हैं, जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया आदर्श ग्राम योजना, उसमें डिवीजन हो रहा है, तो ले देकर भारत में योजना निर्धारण कार्यक्रम क्रियान्वयन का एक नया सुचिंतित आपको संरचना खड़ी करनी पड़ेगी, वरना राजनीतिक तंत्र भी खराब होगा, अर्थतंत्र भी हमारा खराब होगा, और कुल मिलाकर विकास योजनाएं जो प्राथमिकता है उनको एड्रेस नहीं कर पाएंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी, और कार्यक्रम में उन सभी श्रोताओं का शुक्रिया जिनके फोन हम ले पाए, और जिनके फोन नहीं ले पाए उनसे हम माफी मांगते हैं। कार्यक्रम में विदा लें, मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। जापान में अब से कुछ देर पहले शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.8 बताई गई है। अमरीका ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम टापू बनाने की प्रक्रिया पर तुरंत और स्थायी तौर पर रोक लगाने की अपील की है। सीरिया में सरकारी सेनाओं की ओर से हेलीकॉप्टरों के जरिए गिराए गए बमों से कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो इस सभा में फिलहाल इतना ही। मोहनलाल शर्मा को अगले कार्यक्रम तक अनुमति दे, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।